वक्त की मुश्किल को मद्देनजर रखते हुए एक टारगेटेड बात करना चाहूँगा कि जैसा कि मौसम के माहिरीन जो साइंसदान होते हैं वो बता सकते हैं कि आइंदा क्या होने वाला है और फिर आप उसी हिसाब से प्लान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक आध मिनट के अंदर एक रिसर्च साइंटिस्ट होने के नाते आपको प्रिडिक्ट करूँ कि इसराइल का मुस्तकबिल क्या है और फलस्तीन की आज़ादी इनएविटेबल है, नागुजीर है या नहीं है। ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था कि एक प्रॉमिस लैंड को हासिल करना है और जो हमारा सहोनिज़म है ये एक रिलीजन नहीं है बल्कि एक नेशनैलिटी है और नेशनैलिटी इस सरजमीन पर हमारी मिल्कियत है। हमें इस सरजमीन पर इस तरीके से आना है कि हम ताकत जबर जो भी हमें ज़रिए इस्तेमाल करना पड़े उसको करेंगे। लिहाजा उसकी बुनियाद पर दुनिया में कई बहाने बनाए गए जिनमें से आखिरी बहाना होलोकॉस्ट का था और उस बहाने को बुनियाद बनाते हुए कि जो खुद यूरोप के अंदर हुआ पूरी दुनिया से सहोनिज़म के पैरोकारों को इस सरजमीन पर लाकर आबाद किया गया और इस सरजमीन के असली बाशिंदों को जो 1900 का सेंसस है उसके मुताबिक टोटल पॉपुलेशन में 7.5 लाख जो इस सरजमीन के बेटे थे वो अरब और मुसलमान थे और टोटल जो तादाद है उस वक्त ज्यूस की वो 7000 के लगभग थी। लेकिन इस इक्वेशन को चेंज करने के लिए ज़मीनें 98% जो है वो ऑटोमन एम्पायर वाले लोगों की मलकियत थी। इस इक्वेशन को चेंज करने के लिए उस वक्त का 9/11 इस्लामोफोबिया टाइप एक बहाना बनाया गया, उनको यहाँ पर बसाया गया और ख्वाब ये देखा गया कि इसके ज़रिए से उसकी सियासी शक्ल बनाई गई ग्रेटर इसराइल की। उस मजहबी अकीदे की जो प्रॉमिस लैंड है कि जब तक इस सरजमीन पर यहूदियत का कब्जा नहीं होता वो दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकते और अल्लाह ने उन्हें ये वादा किया है उनके बकौल के इस सरजमीन पर उन्हें काबज करेगा ताकि वो दुनिया के हाकिम बने। उसके लिए इस सरजमीन जिसे प्रॉमिस लैंड कहते हैं उसको सियासी शक्ल दे के ग्रेटर इसराइल का नाम दिया गया और उस हवाले से कई प्लान्स बनाए गए जिसमें पहले खुद इसराइल को मुस्तहकम करना, उसे अनडिफीटेबल बनाना, उसकी कुव्वत और ताकत को एक बड़ी ताकत और कुव्वत के तौर पे दुनिया में मनवाना, उसके अलाइज को इस जगह पर लेकर आना कि यूनाइटेड नेशन से लेकर यूनाइटेड स्टेट तक हर जगह उसकी हिमायत पाई जाती हो और इलाके में कोई उसको नो ना कर सके। ये वो ख्वाब था जो उन्होंने देखा और पहली 4 अरब इसराइल जंगों तक उन्होंने इसको बड़ी हद तक अमली भी किया जिनमें मसलन 4 घंटों के टोटल टाइम स्पैन के अंदर मिस्र से सहरा सीना लिया है, उर्दन से दरिया उर्दन का मगरबी किनारा लिया है, इसी तरह लबनान से जनूबी लबनान लिया है और शाम से गोलान हाइट्स लिए हैं मुख्तलिफ मराहिल में। अमली तौर पे उन्होंने इसको प्रूव किया कि ये अनडिफीटेबल है और इसको एक्सटेंड करना है जिसकी आखिरी जो मरला इस साजिश का दाइश की शक्ल में था जिसके जरिए सीरिया और इराक को पैरालाइज करके इसको ग्रेटर इसराइल को दजला और फरात तक पहुंचने की जो है वो राह हमवार की। हुआ क्या? हुआ ये कि उसके मुकाबले में जो प्लान किया था कि हमने इसराइल को वहां तक एक्सपेंड करना है आज इतना वल्नरेबल हो गया है कि उसके गिर्द जो मुजाहमत और रेजिस्टेंस का ब्लॉक है इस तरीके से घेरा तंग कर लिया है कि जैसा कि सैयद अब्बास मुसवी ने कहा था कि सबसे ज्यादा अनकबूत यानी मकबी ये समझती है कि उसका जाल जो उसका घर है सबसे मजबूत है लेकिन अमली तौर पे सबसे कमजोर घर उसी का होता है और कहा इसराइल जो है वो तारे अनकबूत से भी ज्यादा कमजोर है। प्रैक्टिकली ये साबित हुआ, सबसे पहले फलस्तीनियों ने रेजिस्टेंस की, लबनान ने रेजिस्टेंस की, वो जो 2 घंटों के अंदर तल अबीब पर कब्जा करते थे आज सूरत हाल ये है कि 3 दिन पहले जो अटैक हुआ है वो डेमुना के एटमी प्लांट से 9 किलोमीटर के फासले पर गिरा है, वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो नाकाम हो गया, वो जो अनडिफीटेबल इसराइल था वो अपने घर के अंदर शिकस्त पज़ीर हो गया, फलस्तीनियों के मुकाबले में शिकस्त, लबनानियों के मुकाबले में शिकस्त, सीरियंस के मुकाबले में शिकस्त और इस वक्त सिचुएशन ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम वहाँ मौजूद है, अस्करी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, स्ट्रेटजिक डेप्थ की कमी इस हद तक है कि अपने मुल्क के अंदर जंगी मशकें भी खुद नहीं कर सकते, किसी और मुल्क में जाके करनी पड़ती हैं। बाज़ जगहों पर उनकी डेप्थ टोटल 25 किलोमीटर की है कि जिस मुल्क के लिए प्रैक्टिकली आप सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है। जो फ्लो था पूरी दुनिया से यहूदियों को वहां ला के बसाने वाला लैंड ऑर्डर की कमी की वजह से और जो बेसिक फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड करनी थी वो नहीं कर सके उसकी वजह से अब आने का सिलसिला कम है और इस सरजमीन को छोड़कर जाने का सिलसिला ज्यादा है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क दिखा दें कि जिसकी चारों साइड पे एनिमिटीज हों, दुश्मनियां हों और उन्होंने उसको बदतरी शिकस्त दी हो, हर बड़े चैलेंज के मुकाबले में फलस्तीनी रेजिस्टेंस प्रूव किया हो कि वो एक दिन के अंदर 300 मिसाइल दाग के पूरे इसराइल को दामन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं ये कह सकता हूँ इसराइल के डिक्लाइन का आगाज जो है उसने मोमेंटम पकड़ लिया है, डिक्लाइन का आगाज हो गया था उसने मोमेंटम पकड़ लिया है और ये नविश्ते दीवार है। खुद हमने एक मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में लबनान की सरजमीन पर वो जगह देखी है کہ جس جگہ پر انہوں نے فلسطین کا یا جہاں سے اگر کنکر پھینکے تو وہ مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کے اندر جاتا ہے, اور وہاں پر انہوں نے یہ سلوگن لگایا ہوا ہے کہ آئندہ اگر اسرائیل نے کوئی خیانت کی تو آئندہ کی جنگ نہ لبنان کی سرزمین پہ ہوگی, نہ فلسطین کی سرزمین پہ ہوگی, نہ سیریل سرزمین پہ ہوگی, آئندہ کی جنگ کا مارکہ تل ابیب بنے گا, اسرائیل بنے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سمت میں جا رہی ہیں. اور اس خوف کو اوورکم کرنے کے لیے ریکگنیشن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ جی یو اے ای نے ریکگنائز کر لیا, اپنوں میں چھپے غیر سامنے آنے لگ پڑے کہ ایسے نے ریکگنائز کر لیا, انہیں جان لینا چاہیے. جب ان کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے فلسطینی, لبنانی, سیرین, عرب وہ ان کو رستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھ کے ایک منہ سے ریکگنیشن کہنے سے آپ کو بھی نجات نہیں ملے گی اور اسرائیل کو بھی نجات نہیں ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ